ओम शांति। आज हमारी भट्टी में आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी मंच पर हमारे सन्मुख उपस्थित है। सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत से भाई बहनों को तो इन महारथियों को नजदीक से देखने का, मिलने का इस पट्टी में ही सौभाग्य मिलता है, क्योंकि शांतिवन तो बहुत बेहद का है। यहाँ हम नजदीक से सभी वरिष्ठ भाई बहनों की दृष्टि की क्लास की पालना ले सकते हैं। आदरणीय मोहन भाई भी लगभग किशोर अवस्था से ही प्यारे बाबा के यज्ञ में आए, साकार ब्रह्मा बाबा मम्मा के आप बहुत समीप रहे। लौकिक रूप से आप एक सफल इंजीनियर थे और ONGC में आपने बहुत वर्षों तक अपना लौकिक कार्य भी किया, और आखिर बाबा की श्रीमत प्रमाण आप समर्पण हुए। मम्मा बाबा की शक्तिशाली पालना का आपको भाग्य मिला है। समर्पण होने के बाद आप विशेष जब से ज्ञान सरोवर बना, तो बाबा की ज्ञान सरोवर जो एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड कहलाती है, वहां एकेडमी की सेवाओं में आप अथक होकर अपने को बिजी रखते हैं, विशेष रूप से क्योंकि आप भी एक बहुत सफल ऊंचे पद वाले इंजीनियर हैं। तो बाबा के यज्ञ का जो साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग है, उसके भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और उस विंग के माध्यम से भी आप पूरा भारत और विदेशों तक ईश्वरीय सेवाओं की जिम्मेवारी संभालते हैं। तो एक और बाबा के अमूल्य रतन भाई जी हमारे साथ है, और बहुत अच्छा विषय है कि अव्यक्त पालना का अनुभव करने लिए पहले हमें अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना है। जैसा हमारा आज का दिन है विशेष आत्म अनुभूति के लिए, तो अभी अव्यक्त पालना का अनुभव करने लिए अव्यक्त स्थिति कैसे बने, क्योंकि भाई साहब साकार और अव्यक्त दोनों पालनाओं का अनुभव रखते हैं। तो आदरणीय मोहन भाई जी से हम ये क्लास सुनेंगे। मैं उनको विशेष इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि इस समय ज्ञान सरोवर में साइंटिस्ट इंजीनियर विंग का वार्षिक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो आप काफी बिजी है, लेकिन फिर भी भट्टी के लिए आपने बहुत दिल से प्यार से आप सबसे मिलने के लिए समय निकाला है। तो भाई साहब का स्वागत भी है, धन्यवाद भी है। भाई साहब ये हांसी और बरेली के बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जो बाबा के घर तपस्या भट्टी में आए।
ओम शांति। जब साकार और अव्यक्त दो रूपों की बात होती है, तो पहले किस प्रकार से साकार बाबा और यज्ञवत्स मिलकर ओम ध्वनि करते थे, उसका कुछ एक मिनट अनुभव करेंगे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ साकार मिलन की बात करते हैं तो साकार बाबा का चेहरा सम्मुख आ जाता है, और जब अव्यक्त मिलन की बात करते हैं तो किसका चेहरा सामने आता है? बाप दादा के सूक्ष्म, लेकिन उसका भी साकार स्वरूप गुलजार दादी का भी चेहरा सामने आता है। तो आज के विषय की सार्थकता को समझने के लिए पिछले कुछ चार जो स्वरूप हैं उनको कुछ समझना थोड़ा आवश्यक है। पहला है साकार स्वरूप की साकार पालना, और वो तो हम सब जानते हैं साकार बाप दादा के द्वारा शिव बाबा ने कैसे साकार बच्चों की, जब यज्ञ की स्थापना हुई तब से लेकर उनकी जो पालना की है, वो तो मैं समझता हूँ आप सबने यज्ञ इतिहास सुना है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं, सब पुराने बच्चे बैठे हैं। साकार स्वरूप की साकार पालना। दूसरा फिर है साकार स्वरूप की अव्यक्त पालना, और हमें याद आता है कि जब हम लोग ज्ञान में आए तो साकार स्वरूप की साकार पालना का पार्ट चल रहा था। 1962-63 में जब आए ज्ञान में तो बाबा बस जो भी बच्चे आते थे उनको मिलते थे, और साकार रूप से जब पहली बार मिलते थे तो बाबा का हाथ ऐसे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, और फर्स बाबा की बाहों में समा जाते थे बच्चे। तो ये साकार स्वरूप की साकार पालना का, उसके अनुभव का कुछ हमें लाभ मिला। लगभग 1965 तक अधिकतर ये पालना का सब अनुभव करते थे जो बाबा के पुराने बच्चे हैं। आए तो साकार रूप से बाबा घुमाने ले जाते थे पहाड़ियों पर, बैडमिंटन खेला करते थे, पिकनिक करते थे, वो साकार स्वरूप सब कुछ देखने में आता था। फिर उसके बाद से धीरे धीरे साकार स्वरूप का अव्यक्ति पार्ट चला, और 1965 के बाद से लगभग ऐसा अनुभव होता था, और बाबा भी सब समेटते जा रहे थे। और बाबा पहले कहते थे कि बच्चे आओ अपना जीवन कहानी लिख करके दो, आओ बच्चे बाबा को सुनाओ, कोई भी अगर पाप किया है तो वो बिल्कुल आधा माफ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और इस रीति से वो अव्यक्त पालना का अनुभव बच्चे किया करते थे। बाबा के सम्मुख हम जब जाते थे 65 के बाद 66-67 में लगभग, तो बाबा को जैसे ही कुछ कहना शुरू करते थे, बस थोड़ा सा एक मिनट बोला, डेढ़ मिनट बोला, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू करा है, अभी तो हमने पूरी बात कही नहीं है, कि नहीं नहीं बच्चे यही कहना चाहते हो ना ऐसे, और बस बहुत इतनी बात होती थी तो इतने में समेट करके बाबा को कहते थे, बाबा समझता था। तो क्यों? क्योंकि बच्चे तो साकार में होते थे लेकिन बाबा का रूप अव्यक्त होता जा रहा था, तो इस कारण से वो साकार में बाबा होते हुए भी वो अव्यक्त रूप की पालना का अनुभव होता था। बाबा के सम्मुख जाते थे, कोई बात बोलते थे, कोई भी बाबा बात कहते थे, बस जरा सी बात कही, एक दो सेंटेंस, दो तीन सेंटेंस, और बाबा एकदम न्यारे हो जाते थे। जब चाहे देह में आना, जब चाहे देह में से परे हो जाना, ये साफ अनुभव होता था। पार्टियां आती थी, मिलने वाले आते थे, तो बस बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे, या बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, या फिर अपने कमरे में। जब दो तीन लोग होते थे, तो तीन चार, तो अपने कमरे में, जब कुछ ज्यादा होते थे 6-7-8 तो झोपड़ी में, जब इससे भी बड़ी पार्टी होती थी तो हिस्ट्री हॉल में। और वो अनुभव होता था कि जैसे बताया हाँ, बाबा से उस समय जब मिलने जाते थे, बाबा की बाहों में समाते थे, एकदम विदेहीपन का अनुभव होता था, अशरीरी स्थिति का, क्योंकि बाबा खुद अशरीरी स्थिति का बहुत देर तक अभ्यास करते थे, अनुभव करते थे। तो जैसे ही, जैसे मैग्नेट के टच में लोहा आता है तो वो भी मैग्नेट हो जाता है, टेम्परेरी चुंबक हो जाता है, ऐसे ही विदेही स्थिति का अनुभव होता था। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ऐसे, हाँ बच्चे आओ, बहुत प्यार से थपथपा के, आओ बच्चे। जैसे हमारी कॉन्शियसनेस जो विड्रॉ हो जाती थी, देह अभिमान का खत्म, बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में हो जाते थे, फिर हम जैसे न चाहते भी दैहिक स्थिति में आते थे। फिर बाबा हालचाल पूछता था, टोली खिलाता था, परिचय पूछता था, उसके बाद एक जाता था दूसरा आता था, और सब नंबरवारी से ऐसे अनुभव करते थे, अलौकिक पालना का अनुभव। पहले तो देह से खिसके, बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो फर्स्ट स्टेज थी। फिर ये साकार पालना के द्वारा अव्यक्त स्थिति का अनुभव, क्योंकि बाबा की अव्यक्त स्थिति थी तो अव्यक्त स्थिति का बहुत बहुत अनुभव होता था। ऐसे खुद भी बस उस स्थिति में जैसे बहुत समय तक रहते थे, न बोलने का दिल करता था, वही अनुभव सामने, वही छवि घूमती रहती थी। उसके बाद हाँ, ये स्थिति लगभग 69 तक, जब तक बाबा थे साकार में। और अंतिम मुझे एक सौभाग्य मिला है कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय मैं 2 दिन पहले यहाँ आ गया था, और 17 और 18 जनवरी 1969 में मुझे बाबा की अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति का इन आंखों से देखने का मौका मिला। तो उसमें क्या देखा, क्योंकि बाबा तो लगभग संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, तो उन 2 दिनों में हमने क्या देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा दृष्टि देते थे, और हम लोग तो बाबा को उसी साकार रूप में ही देखते थे जैसे साधारण रूप में, लेकिन बाबा जैसे दृष्टि दे करके फिर कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि पहले हम लोग डिटेल में बताया करते थे बाबा को, फिर 66-67 में लगभग थोड़ा सा नटशेल में, सारांश में बताते थे, और अंतिम 2 दिनों में तो हमने एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और हम आते थे बाबा से ये पूछेंगे ये पूछेंगे, बहुत बात होती थी, लेकिन बस सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, मन के भाव को पढ़ा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो ये स्थिति एक बहुत लगभग अंतिम स्थिति है, और इसमें एक बार हुआ, 2 बार हुआ, उन 2 दिनों में 17 और 18 जनवरी को लगभग 6-7 बार बाबा से मिलना हुआ, और जो भी मन में संकल्प होता था बाबा एक्यूरेट पढ़ के एक्यूरेट उसका समाधान कर देते थे, उत्तर दे देते थे। ये है लगभग साकार पालना का अव्यक्त स्वरूप की पराकाष्ठा, बिल्कुल पूरा दिल की बात। और इसीलिए जब ऐसी स्थिति होती है, हम सबको भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि सबको ही कर्मातीत बनना है, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति पानी है। तो इसके लिए जो बाबा ने किया, बाबा समेटता जा रहा था, समेटता, तो हम लोग भी समेटने का काम और तेज करें। बाबा ने सब अपने सामने ही, बाबा ने दादी को पहले तो बाबा मामा का पाठ चलता था, मामा के बाद फिर बाबा ने अपने सामने ही जस्ट दादी और दीदी को अलग अलग पूरी साकार, दीदी नॉर्दर्न इंडिया की सेवाएं देखती थी, दादी साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया की सेवाएं, और इस प्रकार से अपने सामने ही बाबा डिवाइड कर गए और धीरे धीरे खुद पर्सनल पुरुषार्थ में बाबा का समय ज्यादा जाने लगा। जब बाबा अव्यक्त हुए उस दिन, तो सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, आके बाबा ने सिर्फ योग कराया 18 जनवरी को। या तो चूंकि हम ये भी अपना बहुत बड़ा भाग्य समझते हैं कि 17 जनवरी की सुबह बाबा ने अपने पास बुला लिया, और उसके बाद बाबा ने मुरली को कई समय पूरा योग करा के फिर बाबा आए और बाबा ने यशु दादी को बोला, आज जितने भी पत्र लिखाने हो उत्तर वो लिखा लो। क्योंकि बाबा को बाबा की हर एक्टिविटी से लग रहा था कि बाबा को जैसे आभास हो गया था कि आज मेरा अंतिम दिन है इस साकार के द्वारा बच्चों से मिलने का। तो बाबा ने जो भी पेंडिंग काम थे, तो वो एक तो ये काम था पत्र के उत्तर देने का, तो बाबा ने कहा फिर ऐसा ना हो बच्चे कहें अरे हमें तो बाबा का उत्तर ही नहीं मिला पत्र का। दूसरा काम एक पेंडिंग पड़ा था नक्की लेक पर जो म्यूजियम है, वो पहले बिल्डिंग वहां सेवा चलती थी, प्रदर्शनी लगाई थी, तो वो बाबा ने उस दिन फाइल को क्लियर किया कि ये बिल्डिंग खरीद ली जाए, क्योंकि उस समय ना हमारे पास इतने साधन थे ना धन था इतना कि हम ये सब कर लें, तो काफी दिनों से वो फाइल पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन बाबा ने वो क्लियर करा उस दिन। और फिर बाबा ने जो जो काम रहे हुए थे वो पूरे काम, एक बाबा का ये था रोज क्लास होती है रात को 8:30 के बाद 8:45 बजे, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा 6:30 बजे ही, और सब बच्चे भोजन करके क्लास में आ जाएं। तो सब बच्चे, ये खास बाबा ने इंस्ट्रक्शन दी कि भोजन करके क्लास में आए 6:30 बजे ही 7 बजे, क्योंकि बाबा को मालूम था बाद में तो फिर जो होने वाला है उसका आभास बाबा को था, तो बाद में तो फिर भोजन करे न करे क्या परिस्थिति हो, तो ये खास इंस्ट्रक्शन थी। और उसके बाद फिर बाबा क्लास में आए, और उस समय साकार का वो तो लगभग अंतिम क्षण था, अंतिम दिवस था, तो बाबा ने क्लास कराई। और वैसे बाबा को खांसी कई बार कभी आती थी अक्सर करके, एज भी थी, बहुत ठंडी का मौसम भी था, लेकिन उस मुरली में आप देखेंगे बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की नौबत नहीं आई। वो मुरली अभी भी 18 जनवरी की साकार मुरली बाबा की आवाज में ओम शांति भवन के नीचे जो वो है वहां पर मिलती है। तो ये बताता है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो इस शरीर के जो भी कर्म भोग होंगे रहे हुए, उन सब पर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा संपूर्ण रीति से, और कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होगी। क्योंकि अंत समय में अगर कोई भी बात बुद्धि में रही तो बुद्धि वहीं खिंचेगी, तो अंतमति सोगति तो होगी नहीं। बुद्धि कहीं ना खिंचे, ना कभी पेंडिंग काम रहा हो, बचा हुआ काम ये करना हो, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं अक्सर करके जब हमारे भाई बहने कोई भी शरीर छोड़ के जाते हैं पूरे भारत में, तो उनके संबंधी या अलौकिक लौकिक परिवार आता है, भोग लगाता है, हमारा नियम है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब वो आत्मा जब भोग लगाती है संदेशी जाती है, तो उस आत्मा से पूछा जाता है आपकी कोई अंतिम इच्छा, कहता है कि बस मतलब मैं ये करना चाहता था लेकिन मैं टालता रहा, कल कर लूंगा, लेकिन फिर काल आ गया नहीं कर सका। तो अक्सर कई बार ये होता है, वो आत्मा को बहुत आंसू देखने में आते हैं संदेशी को, पछतावा होता है इतना समय सब तक मैं चलता रहा ज्ञान में लेकिन ये मैं सोचता रहा, मेरी भावना भी थी फिर भी मैं नहीं कर सका, अब रह गया। तो हम सब के लिए भी ये संदेश है, अगर कोई पेंडिंग काम हो, कोई विल बनानी हो, कोई जिधर हमारी बुद्धि ज्यादा खिंचती हो, बेटर उन कामों को धीरे हल्का, क्योंकि वो ही अंत में निमित्त बन जाएगा, कारण अंत मते सोगति का, वहां बुद्धि खींचेगी और फिर वो अंत समय में हमारी सदगति नहीं हो पाएगी। ऐसे काम वो निपटा लिए जाए। कोई भी व्यक्ति के तरफ जहाँ अति प्रेम होता है या कुछ अति घृणा हो, वहां बुद्धि जाती है, तो वो ऐसा हम देखते जाए अपने को चेक कि ना कहीं लगाओ ना कहीं झुकाओ, कहीं पर नहीं, ना कोई किसी से थोड़ी भी सूक्ष्म में कोई बदला लेने की भावना, क्योंकि नहीं तो वो ही व्यक्ति अंत समय में हमारी बुद्धि को बिल्कुल चौपट कर देंगे। तो इसीलिए ये बाबा करते जा रहे थे सबको, और ये भी देखा, और उसके साथ साथ और क्या देखा उसमें कि बाबा का, कि बाबा ने मुरली चलाई और खांसी तो एक बार आई नहीं, और उसके बाद फिर बाबा ने, वहीं हम सामने बैठ के मुरली सुन रहे थे, 18 जनवरी की बाबा मुरली चला रहा था, हम सामने बैठे हुए थे, तो हमारे मन में जस्ट एक संकल्प आया, जस्ट बहुत यंग थे 18-19 साल के, तो एक संकल्प आया कि बाबा कुछ बोले। अभी भी जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, तो दिल सबकी होती है हमें स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, हमें टोली मिल जाए, बाबा के हाथ से बाबा की दृष्टि मिल जाए, होता ही है। तो हमें आया कि कुछ बाबा बोले, बस संकल्प आने की देर हुई और संकल्प आया, और बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुका था, तो ये तुरंत बाबा तक संकल्प पहुंचा होगा, और बाबा ने तुरंत ही कुछ सेकंड में ही महावाक्य उच्चारे जो हमारे मन में था, और उसका पूरा का पूरा नाम लेकर के, ये नहीं कि जनरल, तो कई बार मुरली सबके लिए होती है, नाम लेकर के, देखो ये बच्चा मोहन है, कभी किसी की कोई निंदा नहीं करेगा और अंत समय में संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे, आदि आदि सारा बाबा ने उच्चारा, वो मुरली में अभी तक भी है। तो भाव क्या है कहने का कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के बहुत नजदीक होंगे, तो हम भी दूसरे के दिल के भावों को सहज पढ़ करके, उनको जो अंत समय का गायन है ना, भक्त के सामने भगवान प्रत्यक्ष होते थे, भक्त के अंदर कोई इच्छा होती थी, भगवान बस क्या कहते थे, तथास्तु, बस उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी। तो ये जो है प्रत्यक्ष देखा, हाँ, ये उदाहरण किस चीज का है, मन जीते जगत जीत का। जिसने अपना मन जीत लिया, उसने जगत का मन जीत लिया, और ये प्रत्यक्ष हमने 6-7 बार अनुभव किया। हमारे द्वारा दूसरे भी सब अनुभव करेंगे, हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, अंत में जब हमारी भी ऐसी स्थिति होगी, तो बस भक्त आएंगे, भक्त माने कोई भी आत्माएं, इच्छाएं तो सबके मन में होती हैं, तो वो इच्छा लेकर के आएंगे, और उस समय कहने का मार्जिन नहीं होगा, बस हम दृष्टि देंगे और बस बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आएगी आपके सम्मुख, आके यही रूप परिवर्तन हो जाएगा, हंसती हुई चली जाएगी, अशांत आत्मा आएगी शांति के सागर में लहराती हुई चली जाएगी, उसका रूप परिवर्तन करने की हमारे में शक्ति होगी ऑटोमेटिकली ना चाहते भी। तो ये एक प्रत्यक्ष, तो ये हमें भी ये ध्यान रखना है कि अंत में, लेकिन ये अवस्था आएगी कैसे, दूसरे की इच्छाओं को हम तब पूर्ण कर सकेंगे जब खुद हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। अगर हमारे मन में भी कोई इच्छा हुई, कोई संकल्प हुई, तो हमारा भक्त या कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आई और उसमें कोई संकल्प है, लेकिन मेरे मन में भी उसके प्रति कोई बायसिंग का संकल्प है कि ये ऐसा है, ये तो ये है, वो संकल्प उसके संकल्प से मिक्स हो जाएगा और तब हमारा यथार्थ उत्तर वो प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए हमें जो है बिल्कुल निसंकल्प होके किसी के प्रति कोई बात नहीं, और संपूर्णता का एक आधार है, भले भक्ति मार्ग के लोगों ने कहा, कबीर दास का दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ये दुनिया का ये बाजार है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई भी आत्मा से ना तो दोस्ती हो, टू मच लगाव हो, उसको हम दिल की बात कहें, जब तक ना कहें तब तक हल्कापन महसूस ना हो, नहीं ना किसी से बैर, सबके प्रति समान दृष्टि होगी, वो हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगी। तो ये बाबा का देखा 17-18 जनवरी को जो साकार, तब तक बाबा साकार में थे, साकार पालना का अव्यक्त स्वरूप का सबकी, जो बहुतों को ये अनुभव हुआ कि जो उस दिन 17-18 जनवरी या अंतिम कुछ दिन जब बाबा की संपूर्णता की स्थिति हो गई थी, उन्होंने अपने को ये महसूस किया कि हम जो संकल्प लेके गए बाबा के सम्मुख, वो संकल्प हमारा तुरंत पूर्ण हो गया। फिर तो उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला के बस बाबा बाहर आए हिस्ट्री हॉल के, और बाबा ने सबको दृष्टि देते रहे और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। ये वर्ड्स, ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, उसी दिन ही बोले इतने 33 वर्षों में, क्योंकि 1936 में ज्ञान शुरू हुआ और 69 में तो बाबा अव्यक्त हो गया, केवल 33 वर्ष में ही बाबा ने संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लिया। और अभी भी बहुत हैं, हम लोग ही हैं, 50-55 वर्ष हो गए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बाबा क्यों अब संपूर्ण हो गए, क्योंकि बाबा समय के साथ साथ चलते रहे, समय से आगे चलते रहे। एक होते हैं समय से आगे चलने वाले, समय उनके पीछे चलता है, दूसरे हैं समय के साथ चलने वाले, और तीसरे बस उनका वो तो कोई यहां पर है ही नहीं, समय चला जाए और हम पीछे पीछे समय के चले हैं, नहीं। तो बाबा का ये देखा कि ये जो है, क्योंकि गायन जो है अंत मते सो गति का है, अंत में जैसे मति होगी, और उस मति का आधार यही है हमारा पुरुषार्थ, लंबे समय तक, कितना लंबे समय तक अविरल गति से चलता रहा। फिर बाबा तो अपने कमरे में गए, बाबा तो अव्यक्त हुए, और हमने देखा वो भी दृश्य हमारे सामने है। 17 जनवरी को बाबा ने कहा था रात्रि क्लास में कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, बेहद में आते हैं, तो बस यहाँ तो कोई और गोरख धंधा है नहीं, छत पर चले जाएं हिस्ट्री हॉल के और बस अव्यक्त रीति से अशरीरी स्थिति का अनुभव करें, टहले चहल कदमी करते रहें, खुले में बुद्धि भी खुली हो जाएगी, वो अनुभव करेगी। तो बस उस दिन हम भी 18 जनवरी को बाबा मुरली चला के गए कमरे में, हम ऊपर टहल रहे थे तो देखा जमुना प्रसाद भाई जो अभी है यहाँ पर, जानते होंगे बहुत पुराने भाई, वो जो अभी मुरली डिपार्टमेंट में है, तो साइकिल पर बड़ी तेजी से निकले। तो हमने कहा रे अभी इतनी रात में आप कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से ही पूछा। तो उन्होंने कहा कि शायद बाबा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और दादी जी ने कहा है कि डॉक्टर को बुला के ले आओ, तो हम डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं। तो वो उधर गया, हम भी छत से उतरे, और बाबा का जो अभी कमरा है वो ऐसा नहीं था, उतना ही कमरा था जितने तक पलंग पड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा कमरा, कुछ 8x10 का होगा ऐसा, और पीछे से ही रास्ता था छोटी गैलरी का। ये कमरे का एक्सटेंशन तो बाद में हुआ, बैठ करके बच्चे लोग योग तपस्या कर सकें, बाबा के कमरे में जा सकें। तो हम पीछे की तरफ से गए, देखा तो बस दरवाजे से हमें क्या दिखा, दादी जी खड़े हुए हैं, दादी प्रकाशमणि जी, उनका बैक, और आगे पलंग, पलंग पे बाबा बैठे हुए हैं, तो बाबा तो पूरे नहीं दिखे, और वो ही जो दृश्य कि अंत समय में दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए, नैनों से सारी शक्तियों को विल करते हुए, तो वो दृश्य भी हमें जैसे दूर से देखने का मौका मिला। दूर माने यहाँ से जैसे इतना दूर, कमरे के अंदर नहीं गए, और लेकिन कमरे के बाहर जो गैलरी है, वरांडा है, वहां खड़े हो। फिर हम तो चले आए, उसके बाद फिर मतलब बाद में डॉक्टर वगैरह आया होगा, देखा, एग्जामिन किया। अब जाना तो होता ही है, आया परवाना बना बहाना, संपूर्णता की स्थिति को तो बाबा प्राप्त कर चुके थे, तो बस बाबा चले गए। और उसके बाद फिर रात भर हम लोगों ने टेलीग्राम लिखे, फोन किए आदि आदि, वो सब तो एक इतिहास हो गया। लेकिन इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये दो पालनाएं हो गई, जैसे साकार रूप द्वारा साकार पालना, फिर साकार द्वारा अव्यक्त पालना। उसके बाद 21 जनवरी से जैसे पाठ शुरू हुआ, अव्यक्त स्वरूप के द्वारा साकार पालना का। कैसे कि अव्यक्त है शिव ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, लेकिन गुलजार दादी के तन में आकर के साकार पहली बार बाबा 21 जनवरी को आए। अब देखो बाबा का ना, 18 जनवरी को देहावसान हुआ, शरीर छोड़ा, 18 जनवरी की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन 19 की रात, 20 का सारा दिन 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का अग्नि संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर थी, मनमोहनी दीदी, और वो जब तक पहुंचे हैं तो बड़ी दीदी पहुंची 21 तारीख को, और उसके बाद फिर बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर जो है ना, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई लोशन लगाया गया था, कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही चमकता रहा बाबा का शरीर, न काला पड़ा, न कोई दुर्गंध आई शरीर में। और बस जब हम लोगों ने बाबा को स्नान भी कराया 21 तारीख को, और शांति स्तंभ वहां पर जब लेके गए, कोई भी प्रकार की न दुर्गंध न कोई काला पड़ा, और बस ये है, पहले तो देखा साकार में मन जीते जगत जीत की स्थिति, और ये है प्रकृति जीत की स्थिति। पांच तत्वों का बना ये प्रकृति का शरीर भी चूंकि मन जीत गया था, वो उस स्थिति में था, तो प्रकृति के तत्वों पर भी बाबा ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली, और इन पांच तत्वों ने भी बस अंत समय इतने रखा रहा शरीर 65 घंटे तक लगभग, कोई भी दुर्गंध और कोई काफी हद तक उसमें जैसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। तो ये है प्रकृति जीत का, जो हम बच्चों को भी बनना है, मन जीते के साथ साथ प्रकृति जीत। और तब 21 जनवरी को जो बाबा की पहली मुरली चली, वो तो आप सबने सुनी होगी, हम सबने भी प्रत्यक्ष बाबा ने सारा पाठ खोला, अब कैसे सारा यज्ञ चलेगा वगैरह वगैरह, कैसे बच्चे आएंगे, सूर्य चंद्रमा के बाद सितारों की रिमझिम होती है, वो पूरा बताया बाबा ने। और उसके बाद से ही ये पाठ फिर शुरू हुआ, तीसरा स्टेज साकार के द्वारा अव्यक्त पालना, जो अधिकतर आप सबने देखी होगी। साकार माने गुलजार दादी के द्वारा बाबा जब आते थे तो शुरू में तो बिल्कुल ऐसा लगता था, बाबा कई बार नाम लेके, हाँ हाँ रमेश इधर आओ, जगदीश तुम ये बात करो, और ये तो ऐसा बाबा जैसे साकार में बोलते थे, भले वो हस्की वाइस होती थी गुलजार दादी की, लेकिन एक एक बच्चे को बाबा, काफी जिनका नाम बाबा के स्मरण में होता था, ऐसे बुलाते थे जब हम लोग मिला करते थे। कई बार बाबा के कमरे में भी मिले, कई बार हिस्ट्री हॉल में तो मिलने का बहुत हमेशा ही चलता रहा। तो ये साकार के द्वारा अव्यक्त पालना, तो उस समय बाबा चूंकि अव्यक्त हो गए थे, तो अव्यक्त पालना उसका भाव क्या है, कि भाव कि पूरा सब पूरा बुद्धि में है, लेकिन अव्यक्त जिस शरीर का आधार लिया है उस शरीर के द्वारा। जब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते थे बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, बस कब साकार बाबा बोला, कब शिव बाबा ने बोला, कब ब्रह्मा बाबा ने, मुरली पढ़ के सेंटेंस पढ़ के पता चलता था कि ये बोला है। शिव बाबा के वाक्य फर्स्ट वचन में होते थे, और भाई मैं ये कहता हूँ, मैं परम धाम रहता हूँ आदि आदि, वहां से आता हूँ, और ब्रह्मा बाबा का जो महावाक्य होते थे, तो ब्रह्मा बाबा बस देखो राह चलते वामन फस्यो, जैसे बाबा कहते हैं, या जो भी बात उन सेंटेंस से पता चले कि ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं या शिव बाबा के, लेकिन अव्यक्त महावाक्यों में पूरा साउंड हस्की कि जब आत्मा देह से परे हो जाती है तो किस प्रकार से जिस शरीर का आधार लेती है प्रकृति का उस तन में आकर। लेकिन जैसे आप जानते होंगे गुलजार दादी को भी पता नहीं रहता था क्या मुरली चली, तो दादी भी जब आते थे वापस और फिर जब शिव बाबा बाप दादा चले जाते थे तो दादी मुरली पढ़ते थे अव्यक्त मुरली, और तब पता चलता था बाबा उनके तन के द्वारा ये कह के चले गए। और ये पार्ट तो अधिकतर आप में से देखा ही होगा, गुलजार दादी का ये पार्ट इतने वर्षों तक चलता रहा, साकार के द्वारा अव्यक्ति पालना का, सब बच्चों के की कैसे पालना की। कुछ वर्षों पहले तक कहेंगे, 5-6 वर्ष पहले तक, जब गुलजार दादी की हेल्थ भी अच्छी थी और गुलजार दादी के द्वारा बाबा बहुत काफी सार्थक मुरलियां भी चलाते रहे। और अब वर्तमान समय जैसे ये अव्यक्त का अव्यक्त रीति से, क्योंकि अब आवश्यकता इसकी है, बाबा ने कहा कि भाई अब सब बच्चे अलग अलग होंगे, कोई कहाँ होगा, अंत समय में ये सब असाइलम हाउसेस शेल्टर होम आपके बनेंगे, तो हरेक की बुद्धि की क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी अपनी कि बाबा कुछ कहे संदेश दे, हम जहां भी हों हमें भी ये इसका आधार न लेना पड़े कि गुलजार दादी का आधार है, शिव बाप दादा आएंगे और फिर पर्टिकुलर बोलेंगे उस तारीख को उस समय, इन सब के आधार से भी हम परे हो जाए, किसी चीज का आधार न हो। क्योंकि अल्टीमेटली बाबा क्या चाहता है कि हम जब शरीर छोड़ें तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें पूरा, कोई ऐसा न हो, कोई भले कारण तो कोई निमित्त बनेगा ही, जैसे ब्रह्मा बाबा के केस में हार्ट अटैक कारण बना, जो बाबा ने कहा कि बस अंत समय में, बाबा ने जब बच्चों ने पूछा बाबा आपका अंत समय का अनुभव क्या था, तो बाबा ने बताया बच्ची अंत समय बहुत युद्ध चल रही थी, जैसे कर्म भोग की और योग बल की, शरीर के कर्म भोग बचे हुए जो थे ना बहुत दर्द हो रहा था, बहुत युद्ध, वो जैसे देह में खींच रहे थे, और इतने समय का योग बल जो है ना वो जैसे अपनी तरफ, लेकिन वो हल्का था, कर्म भोग बहुत भारी थे तो दर्द ज्यादा महसूस हो रहा था और योग बल जो था वो कम, लेकिन धीरे 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 योग बल बढ़ता गया, कर्म भोग हल्का होता चला गया और बस फिर कैसे आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल के चली गई। तो ये अंतिम पेपर तो हम सभी को पास करना है, जितने भी बचे हुए होंगे वो शरीर के कर्म भोग। इसीलिए बाबा कहता है कि ये अभ्यास होना चाहिए कि जब चाहे हम शरीर में आए, जब चाहे हम शरीर से न्यारे हो जाए। ब्रह्मा बाबा को देखते थे, एक पार्टी का टाइम दिया होता, मानो 10 बजे एक को मिलने का टाइम दिया है, 10:30 बजे दूसरे, पहले एक बम्बई, मानो कलकत्ता या दिल्ली मिलने का पार्ट है, तो एक पार्टी वाले आते थे तो पहले टीचर आती थी, अंदर जाके देखती थी कि चलो बाबा को जरा पूछा है, और देखती थी तो बस बाबा बैठे हैं, आंखें भी खुली हुई हैं लेकिन जैसे कहीं और है, यहाँ देह में नहीं है। फिर जब ब्राह्मणी जाके कहती थी बाबा बाबा, तो थोड़ा सा बाबा को ना जैसे कोई ध्यान में नहीं, साक्षात्कार नहीं, आंख भी खुली हुई लेकिन जैसे फिर भी देह से न्यारी स्थिति। हाँ बच्ची बोलो, बाबा फलाने जगह की पार्टी लाए हूँ। हाँ हाँ ले आओ बच्चे। और फिर बाबा के पास बैठ जाते थे सब, फिर बाबा सबसे मिलते थे, फिर मानो पार्टी का टाइम हो गया, 10 बजे से मिली पार्टी, 10:20 तक या 10:25 तक मिली पार्टी, चली जाती थी और बीच में 5-7 मिनट का टाइम होता था, तो बस पार्टी गई और बाबा फिर देह से न्यारे होके ऊपर चले गए। फिर उसके बाद जब दूसरी पार्टी आती थी, फिर उसके साथ भी ये रिपीट होता था, फिर वो आती थी फिर बाबा के पास, तो बाबा फिर देह में, जैसे मतलब ये भान की बात है, कोई आत्मा निकल नहीं जाती, लेकिन कॉन्शियसनेस को विड्रॉ करने की इतनी इतना अभ्यास होना चाहिए गहरा कि जब चाहे हम अपनी कॉन्शियसनेस को विड्रॉ कर लें, जब चाहे इस शरीर में आ जाए। और ये बाबा ने एक मुरली में बोला था, अंत समय जिनका ये अभ्यास पक्का होगा वो बच्चे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो ये अभ्यास फायदा तो ब्यूटी तो तभी है, शरीर तो सारी दुनिया ही छोड़ती है, कोई प्राकृतिक आपदाओं के वशीभूत, कोई अपने हिसाब किताब के अलग अलग, और अंत समय तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत होंगी, अर्थक्वेक होगी, बिल्डिंग गिरेंगी, फ्लड आएगा, सुनामी होंगी, क्लाउड बर्स्ट होंगे, प्रकृति के बहुत विभत्स रूप होंगे भारत के सामने। तो अगर हमने भी उसके वशीभूत होकर शरीर छोड़ा तो अंत मते सो गति तो होगी नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा। तो बाबा ने कहा चारों तरफ अति हलचल हो, लेकिन आप बच्चों की स्थिति अति अचल। हलचल में अचल ये ब्यूटी है। अगर यहाँ शांति में बैठे और यहाँ कुछ समय अचल स्थिति का अनुभव किया तो कोई ब्यूटी नहीं, कोई विशेषता नहीं। लेकिन अति हलचल हो चारों तरफ, उस समय हम अपने अति अचल। तो उसके बाद जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा और अग्नि संस्कार भी बाबा का किया गया, लेकिन इतना ये स्थिति बाबा की कि जो प्रकृति जीत की स्थिति ये। उसके बाद तो एक बार हमने बस जानकी दादी का ही देखा, आप सबको मालूम होगा जानकी दादी जी की एक बार तबीयत बहुत खराब हो गई थी, 31 दिसंबर 1999 की बात है। दादी लोटस में अहमदाबाद में थे और 31 तारीख को तो बाबा आते ही हैं, नया साल का पूर्व रात्रि होती है, तो बाबा आए हुए थे नीचे शांतिवन में, और वहां पर लोटस हाउस में दादी की तबीयत बहुत खराब, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और दादी को बस जिसको बुलाना हो भाई बुला लो, दादी तो बहुत क्रिटिकल है। और फिर लंदन से जयंती बहन भी आ गए और जो भी संबंध जिनसे को भी बड़े समझते थे। तो यहाँ पर दादी प्रकाशमणि और निर्वैर भाई बाबा को बता रहे थे, अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे गुलजार दादी में, तो बाबा दादी जानकी की तबीयत बहुत सीरियस है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो बाबा ने थोड़ा सुना और बाबा ने कहा नहीं बच्चे उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है, बस एक शब्द बाबा ने बोला और बस तब से उनका तबीयत एकदम ठीक होना शुरू हो गया। देखो आज उस बात को 19 वर्ष हो गए, 20वां वर्ष चल रहा है, अभी भी दादी बस लंदन जाने को तैयार बैठी हुई है, अहमदाबाद में जा रही है, लंदन जा रही है। 103 वर्ष की हो चुकी फिर भी, तो ये प्रकृति जीत का लक्षण है। और बाबा ने दूसरी रीति से वो दिखाया कि प्रकृति से बना हुआ शरीर, और ये भी प्रकृति जीत होके बाबा गए, मन जीत और प्रकृति जीत होके, तो इसने भी अंत तक साथ दिया, कोई भी उसमें अपोजिशन नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये हम लोगों को लक्ष्य रखना चाहिए कि बाबा मैं भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ू, भीष्म पितामह की तरह। तब तो ब्यूटी है, शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन जब अगर हमने अपनी इच्छा से छोड़ा, और वो तब होगा जब हम एक तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। इस संसार की चीजों में क्या इच्छा रखनी, सब विनाशी है, वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए और हमारा हर सेकंड फलीभूत हो। तो एक इस रीति से ये है तीसरी स्टेज, साकार के द्वारा अव्यक्ति पालना का, जो उस समय से पार्ट शुरू हुआ और वो चलता रहा लगभग कुछ 2010-12 तक जैसे चला, और भी आगे तक चला जब मुरलियां बाबा की बहुत पावरफुल आती थी। और अभी तो कुछ समय से 3-4 साल से आप देख रहे हो बाबा का आना भी कम, क्योंकि बाबा क्या चाहता है, हम बच्चे आधारहीन हो जाए, कोई सी बात का आधार न रहे। ये होगा पहले तो भाई गुलजार दादी आएंगी, तब बाबा आएगा मधुबन में आएगा, कई सारे इफ्स एंड बट्स होते थे। अब बाबा चाहता है जहां पर भी बच्चे बैठे बाबा का बुद्धि से आह्वान करें, बाबा तैयार बैठा हुआ है मैसेज देने के लिए, प्रोवाइडेड हमारा रिसीवर सेट जो है ना वो इतना एक्यूरेट ट्यूनिंग हो कि बाबा जो भी ट्रांसमिट कर रहा है उसको हम एक्यूरेटली ट्यून कर सके। और ये हो सकता है, बहुत हमें अनुभव है इस बात का। हम अहमदाबाद में थे तो बाबा ने जब एक मुरली में ये चलाया तो उस समय हम अहमदाबाद में चार भाई बहनों ने निश्चय करा चलो इस पर ट्रायल करते हैं। और एक सप्ताह के ना लिए विशेष पुरुषार्थ किया कि पहले हम 8 घंटे तक वो पहुंचे, लगभग नहीं पहुंच सके 8 घंटे तक, भले 5.5-6 घंटे तक हुआ। और जिस दिन बाबा आने वाले थे उस दिन पूरा मौन। और जब बाबा मधुबन में आए तो हम लोग मुरली कैच करने के लिए और बस डायरी पेन लेके बैठ गए और इधर बाबा ने कुछ मुरली चलाते होंगे, हम लोगों ने जो जो कैच किया वो लिखते गए। फिर उसके बाद मुरली के बाद चारों अगले दिन मिले और फिर देखा कई पॉइंट कॉमन थी, कई अलग अलग थी, तो सबको मिला के उसको एक मुरली जैसी तैयार किया। और उसको जब एक्चुअल मुरली आई 1-2 दिन के बाद तो मिलाया, टैली करा तो काफी लगभग 70-75% तक वो मुरली सेम थी। तो ये अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, ये नारायणपुरा में हम सब लोगों ने मिल करके ना 3-4 चंद्रिका बहन जो महादेव नगर के इंचार्ज हैं, उधर वीर चंद भाई, हम और एक और थे शंकर भाई, तो अगर लक्ष्य होता है काफी हद तक दूर तक। हम लोगों का सभी का ये अनुभव है, कई बार कोई बात करते हैं और तुरंत वो आ जाता है तो एकदम अरे अभी तो हम आपकी बात कर रहे थे आप आ गए। तो ये टेलीपैथी जो है ना ये बहुत बहुत बड़ी साइंस है, यही इसी को मेडिटेशन कहते हैं। किसी भी आत्मा तक जो बाबा कहता है अपनी सकाश भेज सकते हो, तो वो भेजने का कार्य और ये रिसीव करने का कार्य अंत समय यही होगा, जो ये आधार अंतिम आधार भी हमारा निकल जाए। और इस प्रकार से ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये इसी के ही लिए चल रहा है। तो प्रकृति जीत कैसे बनेंगे, अंत में 1-2 बात बता के पूरी करता हूँ। तो आप सबको भी शायद पहले भी कराई हो, प्रकृति के साथ ना हम अपनी मित्रता कर ले, फ्रेंडशिप कर ले। और मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र को सहयोग देता है, उसकी रक्षा करता है। कभी आने पर डिफिकल्ट टाइम में ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड कहा जाता है ना। तो कैसे इस प्रकृति को मित्र बना लें, तो प्रकृति के साथ हम अपने संस्कारों को मैच करते चले। क्योंकि अंतिम जो फोर्थ स्टेज है अव्यक्त स्वरूप द्वारा अव्यक्ति पालना, इसमें हम भी अव्यक्ति स्थिति से ही पार हो सकेंगे। कोई व्यक्त भाव हुआ बिल्कुल पार नहीं हो सकेंगे। तो उसको फ्रेंड बनाने का क्या है, संस्कार मिलाने। फ्रेंडशिप भी उनके बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं, मित्रता होती है। तो उसमें क्या करें, मानो जल है ना? जल के साथ हमें मित्रता करनी है जिससे जल अंत समय में हमारी मृत्यु का कारण न बने, फ्लड के कारण हमारे शरीर न छूटे, क्लाउड बर्स्ट बादल फटने के कारण शरीर न छूटे। कब होगा, बाबा ने ये मुरलियों में कई बार बोला है, विनाश अर्थ क्वेक वहां तक आके रह जाएगा, पास तक महा विनाश होगा लेकिन आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आप तक नहीं आएगा, वहां तक रुक जाएगा। क्योंकि हम प्रकृति जीत आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है। देखने में साधारण शरीर दिखता है लेकिन हम सब आत्मा यहाँ, एक तरफ तो मन जीते जगत जीत, दूसरी तरफ प्रकृति जीत जो बन रही है, जितना जितना हम बनती जाएंगी ये प्रकृति का और सहयोग मिलता जाएगा। तो इसमें जल का क्या संस्कार है, मुख्य शीतलता, और जल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जल जो है ना जिस चीज में लो, गिलास में लो गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो, तो इतना उसमें एडजस्टमेंट होने का संस्कार है। हर चीज से जिस बर्तन में हो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ऐसी अगर हमने अपना एडजस्टमेंट का गुण इतना धारण कर लिया कि सबके साथ, कोई ये ना कहे कि ये सास का बहू के साथ या बाप का बेटे के साथ एडजस्ट होना मुश्किल है, नहीं, सब हम सबके साथ एडजस्ट होके चल सकें, तो कभी भी ये जल का मेन गुण धारण कर लिया तो जल हमारे कष्ट का मृत्यु का कोई कारण नहीं बन सकता। ऐसे जल के और भी गुण है, वो आप लोग देखना। मैं तो एक गुण बताता, धरती का विशेष गुण कौन सा है? सहनशीलता। और भी है दान वीरता। धरती हमेशा देती है, दाता है। देखो धरती से ही ना हमें सब्जी, खाना, अनाज, गेहूं, चावल, फल, फ्रूट, पेट्रोल, सब चीज धरती से मिलती है। तो इसीलिए अगर हम भी दातापन का गुण धारण कर लें तो क्या होगा, वो दातापन के गुण से धरती में जितने भी हलचल होगी, लेकिन वो अर्थक्वेक वो हमारे मृत्यु का या कष्ट का कारण नहीं, क्योंकि धरती का ये गुण दातापन का, हमारे सम्मुख जो आए वो खाली हाथ न जाए। कैसे? फिजिकल कोई चीज देने की जरूरत नहीं, कोई खाना, कपड़ा, पैसा, वो नहीं, बल्कि उससे हमें भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, सहयोग, उसके प्रति हमारी इतना मीठी दृष्टि वृत्ति हो, ऐसी भावना हो, हरेक हमें अपना समझे। बस ब्रह्मा बाबा में यही तो था, हरेक जो आता था बाबा मेरा है, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, हरेक ये अनुभव करता था। तो ऐसे ही धरती का गुण अगर धारण कर लिया तो जितने अर्थक्वेक आएंगे, जितनी प्रॉब्लम होगी, वो कभी भी हमें कष्ट नहीं दे सकती, हमारी मृत्यु का कारण नहीं। तो अभी भी जब भी कोई आए, बस हम उसे सहयोग देते चले, उसके अपनापन का अनुभव कराते चले। ऐसी वायु का क्या गुण होता है? हल्कापन। धरती हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है। विपरीत गुण है फिर भी सह अस्तित्व है, जहां जहां धरती वहां वहां वायु है। तो हमारे लोगों के साथ हम रहेंगे, विपरीत गुण स्वभाव संस्कार वाले लोग होंगे, लेकिन उनके साथ मिलके भी हम हिल मिल के चलते रहें, वो उससे क्या होगा, उनसे वैमस्य न हो, कोई वैर भाव न हो, क्योंकि अपोजिट होते हुए भी को एग्जिस्टेंस की भावना। ऐसे ही आकाश का गुण कौन सा है? विशालता। तो ऐसे ही हमारा हृदय भी इतना विशाल हो, किसी को भी आए, किसी के प्रति, कोई हमारे प्रति कितना भी गलत रखता हो, वैर रखता हो, हमारे मार्ग में रोड़े अटकाता हो, लेकिन हम जो है उसके प्रति बदले की भावना नहीं, क्षमा की दृष्टि हो, बस क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वही क्षमा कर देगा। तो आज हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें कि किसी भी आत्मा के प्रति मेरा कोई ऐसा वैर भाव तो नहीं कि अच्छा जब मौका आएगा बदले की भावना हो, उसे कष्ट देने की भावना हो, नहीं। और इसी तरह अग्नि, सूर्य अग्नि का प्रतीक है, तो अग्नि का क्या गुण है? रूप बदलना। अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसी हमारी भी इतनी ज्वालामुखी अग्नि, जो बाबा कहते हैं वॉल्केनिक योग, हाँ, ज्वालामुखी अग्नि ऐसे जली हुई हो कि जो आत्मा आए उसका रूप बदल जाए, और कोई जो अशांत दुखी आत्मा आए वो सुख का अनुभव करती हुई चली जाए, जो पहले बताया। तो ये प्रकृति जीत बनने के लिए आप निकालना होमवर्क है। अभी तो मैंने एक गुण का वर्णन किया, हर तत्व के कम से कम पांच पांच गुण निकालना जो तत्व में है, लेकिन हमें अभी पूरे रीति से धारण नहीं कर रहे हैं, तभी तो कभी जल का प्रभाव हो जाता है, कभी अग्नि का, अति गर्मी होती है, अति वृष्टि हो जाती है, और वो मनुष्य को कष्ट देते हैं। इसीलिए ये चौथे जो स्वरूप है इसको पार करने के लिए प्रकृति जीत बनकर हम इसे पार कर सकते हैं, और अंत में हमारी भी जब शरीर छूटे भीष्म पितामह की तरह छूटे, जैसे बाबा टाटा करके गया, हाँ बच्चे, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, अंतिम शब्द बाबा के ये थे, ऐसे हम भी बस जब जाए, हाँ बाबा अब आपके पास आ रहे हैं, अब हमारा इस शरीर में, इस दुनिया में पार्ट पूरा हुआ। ओम शांति, ओम शांति।
त्रेता जी ने हमें बहुत सारी साकार यादें और साथ में अव्यक्त पालना का भी सुंदर अनुभव बताए। भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है।